मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 1 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं, विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं जय प्रकाश कुमार, आप महनार बिहार से हैं, और संजय कुमार राम, आपका गांव है जंगीपुर, आप भी बिहार से हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में GDP के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, नो डाउट कि प्रणब मुखर्जी जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन सच पूछिए तो ये मेरा सौभाग्य था कि व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उन्हें देखा है, उनके आसपास थोड़ी देर का वक्त गुजारा है और उस दौर में मैंने उन्हें महसूस किया है। वो जिस तरीके से दिखते थे, जिस तरीके से बातें करते थे, उनकी आंखें जो बोलती थी, उनकी चाल ढाल से जो कुछ झलकता था, ऐसे में बिल्कुल लगता ही नहीं था कि ये कोई ऐसे राजनेता हो सकते हैं या हैं जिनके बारे में हम सबके दिमाग में बड़ी नकारात्मक धारणाएं बनी हुई हैं। ये सच पूछिए तो हमारे यहाँ राजनेताओं की जो बड़ी एक संपन्न एक प्रकार से परंपरा बनी हुई है, और वो अर्थशास्त्र के काल से है, चाणक्य के काल से, जिसे हम प्रजापालक कहते हैं, उसकी झलक प्रणब मुखर्जी जी में दिखाई देती थी। देखिए, बहुत राजनेताओं के साथ तो मुझे रहने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैंने हमारे जो राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा जी, उनके साथ काम किया है। अब्दुल कलाम साहब को नज़दीक से देखा है, काम तो मैंने नहीं किया है, लेकिन उसी परंपरा में मुझे हमारे प्रणब मुखर्जी जी भी दिखाई देते हैं, जिनमें विद्वत्ता है, जिनमें मानवीयता है, जिनमें सरलता और सहजता है, और ये सब अपने आप ही है। ये नहीं कि वो जानबूझ करके कुछ कर रहे हैं, अपने आप ही है। और प्रणब मुखर्जी दोस्तों इसी परंपरा के नेता रहे हैं, लेखक रहे हैं, आप जानते हैं, इतने बड़े बड़े मंत्रालय जो हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय कहे जाते हैं, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज मानी जाती हैं, विदेश मंत्रालय है, उनमें रहे, और जब भी वो किसी मंत्रालय में रहे, वो मंत्रालय एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचा, ये उनकी क्षमता का प्रमाण था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे देश ने उन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया था, वो इनफैक्ट बहुत छोटा ऋण था जो देश ने अपने ऊपर चढ़ाए गए इस ऋण की अदायगी के रूप में उनको दिया है। और अब जबकि वे नहीं है, निश्चित रूप से जो भी उन्हें जानते हैं, उनके आसपास कभी रहे हैं, एक खालीपन का एहसास तो कर ही रहे होंगे। वैसे तो पूरा देश निश्चित रूप से उस खालीपन का एहसास कर रहा है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी की ओर से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं GDP पर आज बातें करूंगा। GDP पर बातें क्यों कर रहा हूं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आज के अखबारों में आपने पढ़ा है, और सच पूछे तो ये सबसे बड़ी खबर भी है कि जो 3 महीने की जो हमारी GDP है वो बहुत ज़्यादा गिरी है। 3 महीने का अर्थ है शुरू के तीन महीने जब मैं कह रहा हूं, तो जब जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, आप जानते हैं कि अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जो हमारी GDP की दर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो दर है, वो नकारात्मक रही है। देखिए, नकारात्मक तो रहनी ही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नकारात्मक होगी इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। यह लगभग 24% रही है, 24%। और दुर्भाग्य की बात यह है, इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, कि पूरी दुनिया में कोरोना का संकट रहा है, किसी भी दूसरे देश की जो वृद्धि दर है वो इतनी ज्यादा नहीं रही है, गिरावट। ब्रिटेन हमारे थोड़ा सा आसपास रहा है 20% के आसपास। अदरवाइज आप चाइना को देखिए, जहां से खासकर कोरोना की शुरुआत हुई थी, वो तो कुछ प्लस में ही है। अमेरिका जो इससे बहुत ज्यादा त्रस्त रहा है, वह भी कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक वृद्धि दर नहीं दिखा रहा है। अमेरिका की भी जो है नकारात्मक, वो 9.5% है। और ऐसे में भारत की जो वृद्धि दर जो गिरी है, वो 23.9% अपने आप में बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप लोग न केवल अखबार में जो बातें दी गई हैं उन्हें पढ़ें ही, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, कितना हुआ, उन उन क्षेत्रों में जो इतना फर्क दिखाई दे रहा है वो फर्क क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है जब आप अर्थशास्त्र को इस रूप में समझ सकेंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र जो हमारा है, कृषि क्षेत्र तो एक तरह सकारात्मक वृद्धि दर दिखा रहा है, 3.4%, यानी कि कृषि क्षेत्र में कोरोना का कोई संकट नहीं है, बल्कि उसका रकबा बढ़ गया है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कहा था। लेकिन कृषि क्षेत्र को जैसे ही हम छोड़ देते हैं, अन्य क्षेत्रों में गिरावट दिखाई देती है। और जो सबसे ज्यादा गिरावट जो हो सकती है, होनी चाहिए, हुई है, आप खुद विचार करके देखिए कि वो क्षेत्र क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब तो आप अखबारों में पढ़ चुके होंगे, न्यूज भी आप सुन चुके होंगे, तो अब आपको अपनी तरफ से सोचने के लिए विशेष अवसर नहीं रह गया है। लेकिन स्वाभाविक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण जो कंस्ट्रक्शन है, पूरा का पूरा बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, आप देखिए कि उसकी कितनी खबरें आ रही थी, वो सब शहर छोड़ छोड़ करके अपने गांवों को लौट रहे हैं। तो दो क्षेत्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने ही होने थे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब मजदूर ही नहीं है तो बात खत्म हो गई, पूरी तरह से लॉकडाउन। और आप देखिए कि हम अप्रैल से जून तक का ले रहे हैं, और 25 मार्च के आसपास ही, शायद 25 मार्च को ही लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, जो लगभग 2 महीने तक लगातार चलती रही। तो जब हमारा पूरा का पूरा जो प्रवासी मजदूर का जो वर्ग था, अपने गांव को वापस भेज दिया गया, तो ये गांव में गए और वहां खेती शुरू कर दी, तो खेती में हमें बढ़त दिखाई दे रही है। और ये जो निर्माण का क्षेत्र था, पूरा का पूरा ठप हो गया। जब बंद ही था तो फिर विकास दर के बढ़ने की संभावना ही कहां रह जाती है। सवाल यहां यह उठता है कि फिर दूसरे देशों ने भी लॉकडाउन किया तो वहां इतनी ज्यादा गिरावट क्यों नहीं आई। दोस्तों, हमें यहां समझना होगा कि दूसरे देशों के जो लॉकडाउन का पैटर्न रहा है और भारत के लॉकडाउन का पैटर्न रहा है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। लॉकडाउन की खबरें हम सुनते रहते थे, लेकिन वो इंटरनली चीजों को बहुत कुछ जारी रखे हुए थे। जैसे अगर आप अमेरिका को लें, तो अमेरिका में तो राज्यों को बहुत अधिकार है इसके बारे में कि वो लॉकडाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वहां विदेशों में जो ज्यादातर लॉकडाउन का पैटर्न रहा है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के रहा है कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारे लोग भी बाहर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अपने देश को सुरक्षित कर लिया। लेकिन अंदर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, वो भारत की तरह इतनी ज्यादा रुकी नहीं। नो डाउट कि उनके पास टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, तो वो ऑनलाइन काम शुरू कर दिया उन्होंने, ऑनलाइन काम भारत में भी हो रहा था। लेकिन हमारे यहां यदि ये प्रवासी मजदूरों के मामले को संभाल लिया जाता, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, ये घोषणा कर दी जाती, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाती कि वो जहां हैं वहां रहें और एक्टिविटीज जारी रहेंगी, उनके लिए जो संस्थान है वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे, उनमें डिस्टेंसिंग बना रख करके रखेंगे, तो शायद इतना ज्यादा डाउनफॉल हमारे जीडीपी में नहीं आता। तो दोस्तों, इसके बारे में अखबारों में आपको बहुत सा पढ़ने को मिलेगा, आप उनसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैं आपसे 2-3 बातें विशेष रूप से कहने जा रहा हूं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से। देखिए, जो जीडीपी है वो क्या है, मैं परिभाषा और उस पर नहीं जा रहा हूं, किताबों में है, आप पढ़ लेंगे, और हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो बहुत विस्तार के साथ इसके सारे एस्पेक्ट पर उनको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसके कैलकुलेशन करने का एक तरीका है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी हुई। जैसे आपकी आय कितनी हुई, तो उसका एक तरीका है कि भाई आपके बैंक अकाउंट को देख लें, कितना पैसा आप सैलरी का आया, कितनी कमाई हुई, तो समझ में आ जाएगा कि आपकी इनकम कितनी हुई। तो राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो याद रखिए कि केवल एक जीडीपी ही नहीं है, उसके चार उपाय हैं, चार तरीके हैं कहना चाहिए। एक है सकल घरेलू उत्पाद, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जीडीपी। इसके बाद और भी 3 तरीके हैं, एनडीपी का मतलब है, दोस्तों आपको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद और अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, याद रखिए, पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जो हमने जीडीपी की बात कही थी। अब मैं जो बात कर रहा हूं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसके बाद जो चौथा है वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। यानी कि जब आप राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन चारों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। प्री एग्जामिनेशन में इन चारों में से किसी भी एक के बारे में पूछा जाता है, तो आप केवल जीडीपी तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि वे स्टूडेंट जो बिल्कुल स्वयं से ही तैयारी कर रहे हैं उनसे इस तरह की चूक होने का खतरा रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसी का फिर सेकेंड पार्ट आता है कि राष्ट्रीय आय की आप गणना कैसे करेंगे। जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट है या नेशनल इनकम है, तो उसको गणना करने का तरीका क्या होगा? ये तो हमने बताया है केवल आकलन करने का तरीका, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए तीन पद्धतियां होती हैं। मैं विस्तार में बताने की स्थिति में नहीं हूं, मैं केवल आपको संकेत के तौर पर बता रहा हूं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स की ये बेसिक्स हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक है इनकम मेथड, जिसे हम आय पद्धति कहते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय पद्धति। और तीसरा होता है उत्पादन पद्धति, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, और इसे ही कहते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड भी प्रोडक्शन मेथड को ही कहते हैं। तो इस तरह से इन तीन मेथड्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद अगर इसमें से हम जीडीपी को ले लें फ्रेंड्स, तो जीडीपी के आधार पर हम इकोनॉमिक साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी बढ़ा, जीडीपी कम हुआ, जीडीपी स्थिर हुआ रहा, जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जीडीपी बहुत ज्यादा गिर गया, तो इसके आधार पर फिर इकोनॉमिक साइकिल हमारा चलता है। और फिर आपको इसी के तहत इन्हें भी पढ़ना होगा, जैसे एक है रिसेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिसार। फिर है धीमी अर्थव्यवस्था, सुस्त अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं स्लो डाउन होना, ये शब्द आप सबने सुने होंगे। फिर है मंदी, डिप्रेशन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट होता है रिकवरी, यानी कि उत्थान हो गया, समुत्थान हो गया। फिर आता है कि एकदम उछाल, बूम, अपस्विंग हो गया, अपटर्न हो गया, बहुत तेजी से उछाल आ गया अर्थव्यवस्था में, उसे हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में बूम आ गया है। तो दोस्तों, ये इकोनॉमिक के साइकिल है। अब आप देखिए कि ये सब के सब जीडीपी से ही जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जीडीपी के अंतर्गत आपको इन सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करना एक आधा अधूरा शब्द होगा, इन पर बहुत अच्छी समझ विकसित करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, असलम आलम छत्तीसगढ़ से, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अमृत नारायण सतपति, अर्थदीप शर्मा और सुयश तिर्की, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।